The following is a lecture on Udo Sandesh, Brahma Gita, from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46, verses 44 to 46, on the topic of the gopis sing the beautiful pastimes of Lord Sri Krishna. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami in Khadia, India, on 26th December
1998. गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तुं समाव्यार्च्य दधीन्यमन्थम् तादीपदीप्तैर्मणिभिर्विरेजुः राज्यो विकर्षाद् भुजकङ्कणस्रजः चलान्नितम्बस्तनहारकुण्डल त्रिशात्कपोलारुणकुङ्कुमाननः उद्गायति नामरबिन्दलोचनम् व्रजाङ्गनानां दिवमास्पृशध्वनिः दह्नाश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरास्यते येन दिशाममङ्गलम्
नन्दस्य कृष्णानुचरस्य एवं ब्रुवतः सा दीर्घायपि निशा व्यतीता एवं शब्द द्वारा नंद महाराज और उद्धव जी के संवाद की आवृत्ति की गई है। इस प्रकार नंद महाराज बोल रहे थे और कृष्णानुचर बोल रहे थे। उद्धव जी को कृष्णानुचर कहा गया है। अशेष चातुर्वत अपि उद्धव से यहाँ कृष्णानुचर कहने का आशय क्या है? जो कृष्ण का अनुचर है ठीक कृष्ण जैसा है, मतलब बोलने में परम चतुर, परम दक्ष, जो नंद बाबा और यशोदा को सांत्वना दे सकते थे लेकिन वे भी नहीं दे पाए, यह भाव। कृष्ण सब विषयों में सबसे बड़े दक्ष व्यक्ति है, चाहे बोलना हो, समझाना हो, कोई भी कला हो, सर्व कला विशारद हैं कृष्ण, सर्वाकर्षक। और ऐसे कृष्ण के अनुचर बोल रहे थे, रात भर प्रवचन करते रहे, लेकिन रात बीत गई लेकिन नंद महाराज और यशोदा का शोक नहीं गया कुछ नहीं। और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं, हे राजन, हे सर्व सद्बुद्धि प्रकाशमान। राजन का कहीं कहीं अर्थ होता है हे राजमान, हे विराजमान, तुम बड़े अच्छे लग रहे हो परीक्षित। कथा सुनते समय सुखदेव गोस्वामी उनको कहते हैं राजन, मतलब तुम बहुत राजित हो रहे हो, बहुत शोभा दे रहे हो, भगवान कृष्ण की कथा में जो तुम्हारी इतनी निष्ठा है इसके चलते तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तो हे राजन, इस प्रकार कृष्णानुचर बोल रहे थे और नंद महाराज उसके बाद बोलने लगते थे। तो वे कृष्ण के गुण गाते थे, कब आएगा, कब भेंट होगी, कृष्ण ऐसे चलता था, ऐसे खाता था, इतना प्रेम करता था, ऐसे ऐसे, केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। उद्धव जी सांत्वना दे रहे थे और बीच बीच में ब्रह्म ज्ञान छांट रहे थे। एक बार तो उन्होंने कहा कृष्ण केवल आपके ही पुत्र नहीं है, सबके पुत्र हैं, और पुत्र ही नहीं है, सबके पिता भी हैं, सबके स्वामी भी हैं, पितामह भी हैं, और कुछ नहीं है, ऐसे कहते थे। उनके न भीतर है न बाहर है, न माता न पिता तस्य, न उनका उनकी कोई माँ है, न उनका कोई पिता है, न बंधु है, न आत्मीय है। फिर कहते हैं सभी उनके पिता हैं, सभी उनकी माँ है, मन हो सकते हैं ऐसे। कुछ भी नंद महाराज को समझा रहे थे, लेकिन नंद महाराज केवल कृष्ण कथा में लगे हुए थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी नंदस्य आगे रख रहे हैं। उद्धव जी समझाने में जो व्याख्यान दे रहे हैं उससे अधिक नंद बाबा कृष्ण के गुणों को बोल रहे हैं, उनका सुख बढ़ता जा रहा है, इसीलिए नंदस्य इति प्रथम निपात प्रथम रखा गया है। प्रधानता की दृष्टि से जितना उद्धव जी बोल रहे हैं उससे अधिक नंद बाबा प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। नंदस्य कृष्णानुचरस्य ब्रुवत, ये सब षष्ठी विभक्ति बोलते बोलते सा निशा व्यतीता, सा वह रात बीत गई। सा वह का क्या अर्थ है? कृष्ण संलाप संबंधिनी निशा, कृष्ण कथा से पूर्ण निशा, अथवा सा दीर्घा अपनी निशा, वह बड़ी रात भी बीत गई। सा अर्थ दीर्घ कालीन रजनी के लिए कहा, बड़ी रात थी लेकिन वह भी बीत। न नंद महाराज का शोक दूर हुआ और न उद्धव जी का सांत्वना देना रुका, तो काल तो बीतता ही जाता है, भोर हो गया, दोनों की बात नहीं बंद हुई। जब भोर हुआ तब उद्धव जी उठकर नित्य कृत्य करने के लिए चले, और देख लिए कि नंद महाराज का शोक तनिक भी कम नहीं हुआ और बढ़ गया। स्नान इत्यादि करने के लिए बिल्कुल ब्राह्म मुहूर्त था, मंगला आरती का समय था। गोपियां उठी, गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तु समभ्यस्य दधिन्यमन्त। गोपियां उठी समुत्थाय, सम्यक उत्थाय, अपने अपने घरों में गोपियां खूब अच्छी तरह से जग करके उठ करके और दीपक जलाई, दीपक जला करके और देहली आदि की पूजा की। गोपी जनों के हाथ से जो दधि मंथन का शब्द निकल रहा था और उनकी चूड़ियां, उनके अलंकार जो बोलने लगे और कृष्ण का गान करने लगे, इसी से वे समझ गए भोर हो गया और उठ गए। दधीनी अमंथन, दही मथने लगे, यह जाति कर्म है। प्रश्न होगा कि गोपियां क्या अब तक काम धंधा घर का कर ही रही थी और समुत्थाय सब सिद्ध कर, क्या वे सोई थी? सोई नहीं थी। समुत्थाय का अर्थ है जाग करके नहीं करना चाहिए, वो सोती नहीं थी, वो नींद तो चली गई। अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी, राधा रानी कहते हैं कि अरे सखी, वे कांताएं, वे स्त्रियां धन्य हैं जो सपने देखती, कम से कम सपने में अपने प्रियतम से मिल लेती हैं, बात करती हैं, वो धन्य है स्त्रियां। लेकिन अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी, लेकिन हमारा तो ऐसा हुआ कि जब से कृष्ण गए तब से वैरिणी नींद भी चली गई। नींद भी आती तो सपना में भी कभी भेंट हो जाती, ये नींद भी चली गई, पता नहीं इसने मेरे साथ कौन बैर ठान लिया, नींद नहीं आने। तो गोपीजन सोती नहीं थी, लेकिन समय से वे दही मथती थी। इसके पीछे कई कारण है। उनको यह प्रगाढ़ भाव बस प्रेम बस आभास होता था कि वे आएंगे माखन मांगने के लिए, हमारा हाथ पकड़ कर रोकने के लिए आएंगे। श्री कृष्ण ऐसी लीला करते थे। राधा रानी ने एक पद में कहा है, सूरदास जी ने गाया है, अरे सखी उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, हमारे प्रियतम आए, मैं दही मथ रही थी और आए तो मैं हूँ आए तो कुछ देर करके आए, तो मुझे चाहिए था कि मैं उनको माखन दूं, उनका स्वागत करूं, लेकिन पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या हो गया, मैं मान कर बैठी और उसे बोलना छोड़ दिया, मान कर बैठी और वो फिर चले गए। तो रो रहे हैं राधा रानी की, मेरे मन में क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो श्री कृष्ण प्राय गोपियों को जा करके छेड़ते थे, माखन मांगते थे ऐसे। तो दही मथने का मूल प्रयोजन ये है, और दूसरा प्रयोजन है कि उसी समय उन्हें कृष्ण का कीर्तन गाने का अवसर मिलता था, उनका यश गाने का। वो अलग से मृदंग बजा करके कीर्तन नहीं करते थे। दही मंथन का शब्द और कंकड़ चूड़ियों की झनकार होती थी, कमर में करधनी बंधी रहती थी उसकी आवाज, और दही मथने के शब्द का आवाज, तो इसके द्वारा कृष्ण का गुण गाते थे। कृष्ण का गुण गाते समय उनको एक अद्भुत अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होती थी। कृष्ण की लीला में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त को जिलाती है लीला कथा। जो भगवान के विरह से तप्त हैं उनके लिए कहीं आधार है कथामृतम, भगवान श्री कृष्ण की कथा। तो वह एक अवसर आता था उस समय वे गाते थे। तो नियम से बिल्कुल खड़ा होकर के दही मथना ये काम करती थी, और योग माया उनसे काम कराती थी घर का काम। जैसा आप लोगों ने सुना था भगवान कहते हैं कि कोई लोक और धर्म को छोड़ देता है तो मैं उसका भरण करता हूँ। तो घर का सारा काम ठीक से होता था, गोपियों का भरण पोषण ठीक से हो रहा था। भगवान करते हैं, भगवान की अपनी स्वरूप भूत शक्ति है योग माया, उसके द्वारा सब साज संभाल करते थे। तो दही समय से मथ रही थी। सुखदेव गोस्वामी गोपी जनों के सौंदर्य का वर्णन किए हैं, दीपक जल रहा है सवेरे सवेरे, और उसमें उनका मुख है चंद्रमा के समान चमक रहा है, दिखाई पड़ रहा है, और उनके कंकर चमक रहे हैं, आभूषण चमक रहे हैं, और उसमें भी गा रही है। इसका ध्यान करते हैं, यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं उनके स्तनों का हिलना, उनके कानों के कुंडल का हिलना, उनकी मुख की छवि, क्यों नहीं ध्यान करें। भगवान की प्रियाए हैं, कृष्ण प्रेममयी महाभाव स्वरूपा सब हैं। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं सवेरे सवेरे। सवेरे भोर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अंधकार हो और छोटा सा भी दीपक जल रहा हो, आरती हो रही है, और उस समय भगवान का मुख देखा जाता है तो एक विशेष शोभा होती है। इसलिए हमने देखा है हमारे मंदिरों में नियम है कि मंगल आरती के समय और सब दीपक बुझा दिए जाते हैं और बल्ब, थोड़ा थोड़ा अंधकार रहता है और उस दीपक के प्रकाश में हम लोग भगवान का मुख देखते हैं, झलमल करता है। कहीं कहीं तो लोग बहुत ज्यादा लाइट भगवान के मुख पर रखते हैं, वो ठीक नहीं है, कम से कम मंगल आरती में ठीक नहीं है। मंगल आरती में दीपक का प्रकाश रखना चाहिए। दीपक के प्रकाश में श्री गोपीजन, जिसमें श्री राधा रानी भी हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। सुखदेव गोस्वामी भावावेश में वर्णन कर रहे हैं, दीप दीप्तर्मणिभिर्विरेजु रज्जु विकर सद्भुज कंकड़ स्रज चल नितंब स्तनहार कुंडल त्रिशत कपोलारुण कुंकुमानन रज्जु विकर सद्भुज कंकड़ स्रज। एक महापरमहंस मुनि विरक्त, जिसके दृष्टि में यह स्त्री है यह पुरुष है भेद ही नहीं था, वह गोपियों के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। कितनी महिमामयी हैं वे, तो भगवान की प्रियाएं। रज्जु विकर्षक, रज्जु का विशेष रूप से आकर्षण कर रही, कर्षण खींच रही है। दही महते समय जिन लोगों ने देखा होगा किसी स्त्री को, वे बहुत जल्दी समझ जाएंगे दही महते समय। इसमें बहुत लोग देखे भी नहीं होंगे कैसे दही मथा जाता है, और वो भी शहर में दही मथ लेना मशीन से दूसरी बात, गांव में रज्जू से दही मथना होता है, मटका रहता है उसमें दही और एक लकड़ी का बना होता है मंथन, रस्सी फंसा करके मथते हैं, और एक स्तंभ रहता है जो दधि मंथन दंड को बांधे रहता है, इधर नहीं आने देता है। हम लोग इसको खूब देखे हैं, किए भी हैं। दही मथना ऐसा तो रज्जु विकर्षद कहते हैं, रज्जु को खींच रही थी भुजाओं से, तो पहले भुजाओं का ध्यान कर रहे हैं। रज्जु विकर्षत भुज विकर्षत्सु, रज्जु विकर्षत्सु मंथन दंड रज्जु विकर्षत्सु, मंथन दंड में जो रज्जु है रस्सी है उसको खींच रही है जो भुजाएं, उन भुजाओं में कंकणा नाम स्रक, स्रक का अर्थ श्रेणी माला, कंकण स्रज, कंकणा नाम स्रक श्रेणी, एक एक दो दो चूड़ी नहीं है, बहुत चूड़ियां पहनी हुई है और उन भुजाओं से खींच रही है। कंकणा कंकड़ सृजन चलनम वाद्यम च सूचयति, कंकड़ सृजन, इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ आगे जैसा जैसी बात आएगी कि चूड़ियां जो हैं वाद्य के रूप में काम कर रही हैं। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं बारम्बार ऐसे झन 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 खींचने से वो आवाज आ रही है, इसके द्वारा ये वाद्य का काम कर रहा है। और दही मंथन का शब्द भी वाद्य का काम करे, ठीक उसी तरह से दही मथने का जो शब्द है वो मृदंग की आवाज की तरह है, और हाथों में जो चूड़ियां हैं वो करताल की तरह, झंझ की तरह, और गान तो ये कर ही रही है। इसके द्वारा ये सिद्ध हो रहा है, स्रज मतलब कंकड़ों की श्रेणियां हैं हाथों में, इसका अर्थ है कि बाजे बज रहे, आपस में टकरा रही हैं चूड़ियां। चलन नितंब स्तनहार कुंडल त्रिशत कपोला ऋण कुंकुमानना, चलंत नितंब स्तन हार कुंडल चासंता, उनके बड़े बड़े नितंब चल रहे हैं, उनके स्तन हिल रहे हैं, और गले में जो हार लगाई है वो हार हिल रहे हैं, और कानों में कुंडल हिल रहे हैं। सबके लिए चलक शब्द का प्रयोग किया गया, चलक अपने अपने स्वभाव स्वरूप के अनुसार वे हिल रहे हैं, चलक नितंब चलक स्तन चलक हार चलक कुंडल, और इससे चलक भी कुंडल ही त्विसंत स्फुरंत कपोला, और लास्ट में जो कुंडल शब्द है अब वहां से अर्थ बदल रहा है, चलते हुए मन स्फुरित होते हुए हिलते हुए कुंडलों के त्विस से प्रकाश से जगमगाहट से कुंडलों के कारण तीसत कपोल झलमल कर रहा है, कपोल गोपीजनों का गाल चमक रहा है कुंडलों की आभा से। स्वभावतः व रज्जु विकर्षद श्रमज खेद बिंदुवीर व भ्राजित कपोल, अथवा रस्सी खींचने में जो श्रम होता है तो श्रम में उनसे जो स्वेद बिंदु थोड़े थोड़े उभर रहे हैं मुख पर, उनसे मुख बहुत सुंदर लग रहा है, पसीने के बूंद त्रिशत कपोला, क्योंकि दीपक में छोटी छोटी बूंदे परिश्रम की पसीने की बूंदे भी चमक रही हैं मुक्ता की तरह मोती की तरह, तो इससे कपोला और सुंदर लग रहा है। अरुण कुंकुमानना, और थोड़े थोड़े श्रम के कारण मुख पर ललाई आ गई है, जो परिश्रम होता है तो मुख थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है, अथवा स्वाभाविक सौंदर्य है इस तरह से कुमकुम की तरह आनंद है, कुमकुम से युक्त आनंद, दीप दीप्त ही कृत्वा दीप्त अधिकम दूत माने रित्यर्थ, दीप दीप्त मणि भी, बहुत सी मणियों का आभूषण पहने हुए हैं वे, दीपक से वे दीप्त मणियां हैं, वैसे तो स्वयं भी चमक रही हैं मणियां रत्न, लेकिन दीपक से और दीप्त हो गए प्रकाशित हो रही, दीप दीप्त मणि भी, दीप ही कृत्वा दीप्त अधिकम दूत माने मणि भी, अथवा दीप दीप्त का अर्थ है कि दीपक से भी अधिक दीप्त मणियां लगाई हुई, दीप दीप्त दीपेभ्यो अपि दीप्त मणि भी, दीपक से भी अधिक जगमगाहट है जो गहना लगाई है आभूषण, तो उन गहनों से ताह बिरेजु बहुत सुंदर लग रही, विशेष रेजु विशेष रूप से राज रही है, सुंदर लग रही। कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, कृष्ण का गान हो रहा है, इसलिए कह रहे बहुत सुंदर लग रही। बिरेजु शब्द द्वारा मानो सुखदेव गोस्वामी अपने सभा के श्रोताओं को मुनियों को उस दृश्य की ओर खींच रहे, क्या कहूँ कितनी सुंदर लग रही है, जरा ध्यान करके देखिए। विशेषण रेजु बहुत सुंदर लग रही। अच्छा, अब दही मंथन का मूल प्रयोजन कर रहे हैं, जो गान गाने के लिए दही मस्ती थी, मूल प्रयोजन ये था। अथवा संततम कृष्णा वेश युक्ता नाम पितासन ब्रज व्यवहार रक्षणाय श्री कृष्ण रक्षित तत्त संस्कार वसाद दधि मंथने अपि तदा वेशम सूचयन तत्र च संजोग अवसर तया गाने न अतिशयम दर्शयन तेन जगतो अपि मंगलम जातम इत्या। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि कृष्ण में हमेशा गोपीजनों का आवेश रहता था, लेकिन श्री कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे थे, ये सब कार्य कराना दही मंथन आदि का, और खास करके दही मंथन वो करती थी तो उस समय उन्हें संयोग जैसा अनुभव होता था कृष्ण के प्रति, एक वो ऐसा अवसर था गान के कारण और भी तरह से आवेश होता था, तो लगता था हम कृष्ण के साथ हैं, इसीलिए गाती थी। और गाने से उनको तो सुख मिलता ही था, इससे जगत का भी हित होता था, जगतों की मंगलम जातम, यह इस श्लोक में कह रहे हैं।
उद्गायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगनानाम दिवमास्पृशत ध्वनि दधनाश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरास्य तेजेन दिशाम मंगलम।
अरविंद लोचनम उद्गायती नाम, अरविंद लोचन को कमल नयन को गा रही थी उच्च स्वर से, ऊंचे ही जथा स्यात तथा जितना उच्च हो सकता था मधुर कंठ से गा रही थी दधिमंथन के शब्द पर। मंगला आरती का शब्द सारे गांव में जाना चाहिए, ये मंगला आरती समझिए। स्वाभाविक कर्म करते समय भी कीर्तन हो रहा है उच्च स्वर से, ऊंचे ही तो ऊंचे ही तो हम लोगों से बहुत ज्यादा ऊंचे ही, लाउड स्पीकर बनाएगा ना ऊंचे ही
जोर से ऊंचा हो जाए। जय जय एक बार हो चाहिए
अरविंद लोचनम, अरविंद का अर्थ है कमल और लोचन आंख, जिनकी आंख कमल से भी अधिक सुंदर है उनको गा रही थी। सुखदेव गोस्वामी की भाषा है तो इसका अर्थ क्या है, इति सौंदर्य प्रधानम गानम, गीत में सौंदर्य की प्रधानता है, मतलब भगवान की सुंदरता को अधिक गा रही है, कमल नयन शब्द सिद्ध कर रहा है, सौंदर्य सूचित हो रहा है। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य की जो माधुरी थी उसको गा रही अधिक, उसमें अविष्ट। अरविंद लोचनम उद्गायती नाम, उद्गायती नाम उच्च गायंती नाम उच्च इति आवेशो दर्शिता, आवेश से उच्च स्वर से गा रही है, आलाप ले लेकर गा रही, इसे आवेश सिद्ध हो रहा है गान में। आवेश का अर्थ है आनंद की अनुभूति, डूब जाना उसी में, गाते रहना। तो वो दही मत रही थी तो दही अब मत दिया गया है, घी निकल आया है, ये सब नहीं देखती थी मत रही थी क्योंकि गान में आवेश है, न कि दही मंथन में आवेश है। गाये तो उच्च उद्गायती नाम ब्रजांगना नाम, उच्च स्वर से गाने वाली ब्रजांगनाओं का ध्वनि शब्द, दधना निर्मंथन शब्द मिश्रित, दही के मंथन में जो शब्द निकल रहे थे उनसे मिश्रित होकर के कंकड़ आदि का शब्द भी ये सब मिश्रित हो करके दिशाओं का अमंगल दूर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि दिशाओं में साफ चूड़ियों की आवाज और दही के मथने का की आवाज और किंकड़ी की आवाज ये सब हो रहे थे और इससे दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा है। अमंगल क्या है? कृष्ण विमुखता है। कहने दिशाओं का अमंगल मतलब लोगों का अमंगल। और ये ब्रजवास ब्रज का नहीं, और ब्रज का अमंगल क्या था? कृष्ण का अदर्शन। तो गोपियों का गीत ऐसा भाव पैदा कर देता था, इतना क्लियर शब्द आता था कि लोग ऐसा महसूस करते थे कृष्ण हमारे साथ। तो इसलिए ब्रजवासियों का विरह जनित अमंगल दूर हो रहा था, ये दुख दूर हो रहा था। और ऊर्ध्व लोक में देवताओं का और सबका काम जा रहा था, मतलब उनकी वासनाएं संसारिक निरस्त हो रही थी, प्रभाव पड़ रहा था ऐसा जो सब कृष्ण के भक्त हो रहे थे। इस तरह दिशाओं का मंगल दूर हो रहा है। वाग गदगदा द्रवते जस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचित च विलज्ज उद्गायति निर्तते च मद्भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान ने कभी भी नहीं कहा है कि ध्यान करने वाला आत्मानम अपि पुनाति। उच्च गान गोपी जनों के द्वारा पाया गया है। देखिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। स्त्रियों के लिए इतना उच्च स्वर से गाना ये कोई ठीक कार्य नहीं है, लेकिन इतना आवेश है कृष्ण में कि वे गा रही हैं। उनको ध्यान नहीं है कि हमारे ससुर क्या कहेंगे या घर के लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे, वो तो बस आवेश में है, गा रही, आवेश सूचित हो रहा है। इस तरह उच्च स्वर से गाना चाहिए, सीखना चाहिए, इससे जगत का मंगल होगा। और गोपियां जो गा रही हैं भगवान के विषय में, तो उनके आंखों से अश्रु है, कंठ भी गदगद है, फिर भी गा रही। तो वाक गदगदा द्रवते जस चित्तम, वाणी जिसकी गदगद हो जाए मेरा स्मरण करके, और द्रवते जस चित्तम जिसके चित्त की धारा मेरे तरफ बहने लगे, बहती है। रुदत्य भीक्षणम जो हमेशा रोता रहता है मेरे विरह में, और हसती क्वचित च और कभी कभी ठठा कर हंसता भी है, मतलब मेरी माखन चोरी आदि की लीलाओं की याद करके कभी कभी अकस्मात हंसने लगता है। वो ये बताने के लिए, मान लीजिए कृष्ण छिपे हुए हैं और कोई भक्त है, मन में भावना कर रहा है कृष्ण छिपे हैं, तो वो कहे बता दूंगा माँ से, और ठठा करके हंसी आ जाती है अकस्मात। और लोग देखते हैं क्या पागल हो गया ये क्या करने लगा है। तो हंसती को चीज भक्त हंसता भी है, और विलज्ज उद्गायती विगत लज्जा हो करके लाज छोड़ करके उच्च स्वर से गाता है, ऐसा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है। भगवान का वाक्य है, और यहाँ ये सुखदेव गोस्वामी का वाक्य है। निरस्ते जन दिशाम अमंगलम, दिशाम बहुवचन में है, समस्त दिशाओं में जितने भी चर अचर प्राणी हैं सब पर गोपियों के गीत का असर हो रहा है, और कृष्ण प्रेम भर रहा है सब में, और ब्रजवासियों का विशेष करके कृष्ण विरह ज्वर कम हो रहा है, उनके लिए यही अमंगल गा रही है। गान में प्रधान स्वर क्या है? गोपी जनों के कंठ का स्वर प्रधान है, बिल्कुल क्लियर निकल रहा है। लेकिन इसके साथ दधन निर्मंथन शब्द मिश्र, दही का निर्मंथन जो हो रहा है वो शब्द मिला हुआ है, और च च का अर्थ है कंकड़ का शब्द, किंकिणी का शब्द, ये शब्द उसमें मिश्रित। च शब्द चकारत कंकड़ादे शब्द च मिश्रित, कंकड़ आदि का शब्द मिला है। अलग से कोई लेकर के वाद्य सितार हारमोनियम तबला लेकर नहीं गा रही है, अपने जाति का जो स्वाभाविक काम हो कर रही हैं, और गा रही है। पहले हमने देखा था हमारे गांव में कई ऐसे भक्त थे जो हल चलाते समय भी उच्च स्वर से कीर्तन गाया करते थे। इसी तरह से कभी कभी स्त्रियां गाती हैं काम करते समय, खेतों में रोपनी करते समय गाती हैं, या कुछ कूटते समय, पीसते समय। अब तो कूटना पीसना है नहीं, केवल टीवी देखना काम है, इसलिए अब क्या गाएंगे और क्या सुने गांव में। लेकिन फिर भी अभी है, गांव में अभी भी है गीत गाती। विशेष करके सारे गीत भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से संबंधित होते हैं अभी भी गांव में। इस तरह से भगवान की भक्ति से जगत को सराबोर कर रही थी। गोपियां भगवान के विषय में गीत गा रही हैं, तो यहाँ पर कुछ नमूने गीत करते रहे हैं। ऐसे उनका ताल, राग, स्वर जो भी हो, लेकिन बाद के भक्तों ने उनके भावों को अपनी भाषा में गाया है, बहुत बहुत गाया है, कोई संख्या लिमिट नहीं कर सकता, इतना अधिक गाया है भक्तों ने। गाते ही रहे हैं, गाते ही रहेंगे आगे भी। लोग दही मस रही हैं, तो उनको शाम के समय प्रियतम किस तरह वन से लौटते थे उसको वे गा रहे हैं। कोई गोपी कहती है कि हे सखी, कल हमारे इसी गली से कृष्ण आए तो आने में उनकी आवनी ही हमारे आंखों में बस गई है, इतनी सुंदर उनकी चाल थी। इसी प्रकार की वे लीलाएं गा रही हैं, जिसे ऐसा लग रहा है कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण से दूर है ही नहीं। पहले अर्थ समझा लेते हैं। डगमगी गगनी धरनी छवि ही के भार, छवि ही के भार। अरे सखी, कृष्ण पर शोभा का इतना बड़ा वजन है, सौंदर्य के भार से डगनी धरनी जो डग धरते हैं, क्योंकि पग रखनी जो है वो डगमगी हो जाती। कोई व्यक्ति यदि बहुत वजन लेकर के चले तो उसकी चाल सीधी नहीं हो पाएगी, वो झुक जाएगा। कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हो गए, त्रिभंग ललित हो गए हैं, क्योंकि सुघराई का इतना बड़ा भार है उनके ऊपर, सौंदर्य का, उसको संभाल नहीं पाते, सौंदर्य का भार संभाल नहीं पाते। तो कैसे रखते हैं पग, उनका पग कैसे पड़ता है, दगमगी दगली धरन, दगली माने देग, जब पग रखते हैं, पग धारण करते हैं तो डगमगे, ठीक है। ऐसे भगवान बड़े झुक करके नाचते गाते हुए चलते, सीधा नहीं चल पाते हैं, चल ही नहीं सकते, इतना शोभा का भार है उनके ऊपर। सौंदर्य प्रधान गीत था, इसीलिए मुझे ध्यान आ गया ये श्लोक, तो मैं इसको यहाँ पर लिखा। धरनी छबीले उरासी बनमाल की, एक तो चाल टेढ़ी है शोभा के छवि के भार से, और धरनी छबीले उर आछी बनमाल की, बनमाल की जो धरनी है, बनमाल फूल की माला जो उनके ऊपर लटकी है, छबीले उर पर, उर मतलब वक्षस्थल, छबीले मतलब शोभाशाली वक्षस्थल, सुंदर वक्षस्थल पर, छबीले उर पर बनमाला की धरनी बहुत अच्छी है, आछी बनमाला जो लटकी हुई है वो बहुत सुंदर लगी। आते समय शाम के समय जो कृष्ण उस गली से निकले, उस समय की बात, और भगवान कोई भी बहाना करके किसी भी गली में मुड़ जाते थे। ऐसा नहीं था कि मेन गली से ही वो नंद भवन में खिड़क में जाए, कभी कभी ऐसे झूठा भी कहते थे, उधर एक गाय चली गई, उधर एक बछड़ा चला गया। कभी कभी किसी गोपी से पूछते हैं, इधर कोई बछड़ा गया, और उनको तो उसके मन को सुख देना है अपने दृष्टिपात से, अपने मुस्कान से, इससे उससे। इस तरह से गृह में प्रवेश करते थे तो गोपी का स्वागत करते हुए प्रवेश करते अपनी दृष्टि से, मन मुस्कान से, लीला, क्योंकि दिन भर वे विरह के ज्वर से दग्ध रहती थी, शाम के समय शीतल होती थी। तो धरनी छबीले उर आछी बनमाल की, बनमाला की धरनी लटकन छबीले उर पर बहुत अच्छी लगती। सुंदर बदन पर कोरी का मदन वारो, कोरी मतलब कोटिक, उनके सुंदर मुख पर मैं तो करोड़ों करोड़ों मदन कामदेव को नौछावर करती हूँ। कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक सुंदर उनका मुख है। चित्त चुभि चित्त वाली लोचन विशाल की, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, विशाल लोचन की चितवनी देखना मेरे चित्त में चुभ गई। चुभ गए जैसे कोई अस्त्र धस जाए, ऐसे कलेजा भी धस गई है उनकी चितौन। चितौन मतलब तिरछी चितौन देखना। चित चुभि चितवनी लोचन विशाल, काली यही गली अली निकसे औचक है, अरी अली अरी सखी कल मेरे इसी गली में अकस्मात आए। पहले से सूचना नहीं थी, अकस्मात आए औचक आए, कहा कहाँ अटक भटक ही काल की सखी। मैं उस समय की अटक भटक क्या कहूँ, मैं तो बिल्कुल अवाक रह गई, क्या करूँ क्या बात करूँ, मैं तो स्तब्ध रह गई। अटक भटक मतलब अपनी विवशता, मैं क्या कहूँ, कहा कहाँ अटक भटक ही काल की, भिजई हो रोम रोम आनंद के घन छा, जो आनंद का घन छा गया बरसने लगा और मेरा रोम रोम भींग गया। तो आनंद घन बरस रहा है तो इसका मतलब आनंद जल से रोम रोम भींग गया, शीतल हो गई। बसी मेरी आँखी में मैं आमनी गोपाल, मेरी आँख में आज भी केवल वही आमनी बस गई। कल ही की लीला है तो आज तो बिल्कुल ताजी रहेगी। बसी मेरे आँखी में मैं आमनी गोपाल,
डगमगी डगनी धरनी छबी के भार, डगमगी डगमगी डगनी धरनी छबी के भार, डगमगी धरनी छबिले उर आछी बनमाल की, धरनी छबिले उर आछी बनमाल की, धरनी छबिले उर आछी बनमाल की, धरनी छबिले सुंदरा बदन पर कोटिक मदन वारो, सुंदर बदन पर कोटिक मदन वारो, सुंदरा बदन पर कोटिक मदन वारो, सुंदर चुभी चितवनी लोचन विशाल की, चित चुभी चितवनी ही गली अली निक से औचक आय, कालही ही गली अली निक से औचक आय, कालही चक आय, काल ही गली गली चक आय, कहाँ अटक भटकती काल की, कहाँ कहाँ अटक भटकती काल की, कहाँ कहाँ अटक भटकती काल की, भिजई हाँ रोम रोम आनंद के घन छाय, भिजई हाँ रोम रोम आनंद के घन बस मेरी अखिल में आवनी गोपाल के बस मेरी अखिल बस मेरी अखिल में आवनी गोपाल के बस मेरी अखिल
शाम के समय वन से आने की लीला है। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए मोहन मन ही हरि आवत तो हरि 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 मन धीरे धीरे जैसे हरे हरे आए बस धीरे धीरे आ रहे हैं। सांझ समय साजे साज शाम के समय सज करके आते हैं और साथ में ग्वाल बाल मोहन मन ही मन को मोहने वाले हरि आवत हरु हरु धीरे धीरे आ रहे हैं। शीश मोर मुकुट लकुट कर लीन ओढ़े पीत उपरैना जने टाको चार गोखर शीश पर मोर मुकुट है कर में लकुटी है और पीत उपरैना ओढ़े हैं पीला दुपट्टा ओढ़े हैं जिसमें गोखरू टाका गया है जरी की गई है सोने की या पीला वस्त्र है तो दूसरे दूसरे रंग के मणि चढ़ाए गए हैं। हरिचंद बेनु को बजावत है गावत सुहावत है लिए साथ साथ गाय बाछर बेनु बजा रहे हैं गा रहे हैं नाच रहे हैं और साथ में गाय बच्चे बछरू आ रहे हैं। नाचे तो ग्वाल मध्य लाजे तो मनोज लगे ग्वालों के बीच में नाचते ही आ रहे हैं जिसको देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाता है। आवे सखी बाजे तो गोपाल पाए घूंघर है सखी ध्यान से सुनो कृष्ण आ रहे हैं उनके पैर में घूंघरू कितना अच्छे बज रहे हैं।
सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए सांझ समय साजे साज मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े चारु गोखरु पीतहु पर ना जाने हरि चंद बेनु को बजावत है गावत सु हरि चंद बेनु को बजावत हरि चंद साथ गाय बछरु आवत है ओ आवत है लिए साथ साथ गाय बछरु आवत नाचत गुआल मध्य लाजत मनोज लखी नाचत गुआल नाचत गुआल मध्य लाजत मनोज लखी नाचत गुआल सखी बजत गोपाल पाय घुंघरु आवे सखी बजत गोपाल पाय सखी भगत गोपाल पाय घुंघरू आए सखी भगत गोपाल पाय घुंघरू।
इस तरह से गोपियां गीत गा रही हैं, सब मिलन के गीत गा रही हैं, बिछुड़ने के नहीं। तो सांझी लीला में भगवान का मिलन होता है लौट से, इसलिए यह लीला बहुत आनंद देने वाली है। फिर एक लीला भारतीय हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, रानी कहती है कि हे प्रियतम, आप होरी खेलिए, आपको मना नहीं है, खेलो मिली होरी, ढोरो केसर कमोरी, और केसर की कमोरी भी धरकाइए। कमोरी कहते हैं कटोरी जैसा होता है, रंग जिसमें रखा है। तो होरी खेलिए, केसर और रंग भी धारिए, और फेंको भरी भरी झोली, और अबीर आदि जो भी फेंकना हो भर भर करके फेंकिए। लज्जिए न विचारो न, आप लज्जा मत कीजिए, जो भी रंग डालना हो डालिए। दारो सबे रंग संग चंग हूँ बजाओ गाओ, आप सब सखाओं के साथ नाचिए, रंग डालिए और चंग दस भी बजाइए। जो सबन रिझाओ सरसाओ शंख धारो ना, शंकित मत होइए, होली खेलिए। लेकिन कहत तन्नी होरी करजोरी हरिचंद्र प्यारे, हे हरिचंद्र प्यारे, हे कृष्णचंद्र प्यारे, आपसे मैं एक ही विनती करती हूँ हाथ जोड़कर। मेरी विनती है एक हाहाताही तारोला, उसको मत चारो, इस पर ध्यान रखो। नयन है चकोर मुखचंद पे पड़ेगी ओट, या तो इन्हें आंखी में गुलाल लाल डारोला। ये आपका मुख चंद्रमा के समान है और मेरे नयन चकोर है, तो आंख में भी गुलाल डाल देंगे तो आपका मुख देखने में बड़ी बाधा हो जाएगी, नहीं देख पाऊंगी। इसलिए और सब जगह रंग डालिए लेकिन आंख में गुलाल मत डालिए। लाल का अर्थ लाल, और लाल माने कृष्ण, प्यारा कृष्ण दोनों है। जाते इन आंखी में गुलाल लाल डारो में, इसलिए आंख में गुलाल मत डालिए, नहीं तो आपको देखने में बाधा होगी, बहुत बड़ी विपत्ति हो जाएगी। खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी, फेंको खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी, भरी भरी झोरी लाज जिए में बिचारो ना, मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी, फेंको खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी, भरी भरी झोरी लाज जिए ने बिचारो ना, भरी भरी दारो सब रंग संग चंग हूँ बजाओ गाओ, 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 सब नारी सरसाओ शंख धारो ना, सब नारी सरसाओ शंख धारो ना, कहत मिहुरी कर जोरी हरी चंद प्यारे, 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 मेरी विनती है एक हाहाताही तारो ना, मैं न है चकोर
मुख चंद ते परेगी ओ तनना है सब
साकरी खोरी मतलब संकीर्ण खोर गली, इधर इधर भी खोर कहते हैं संकीर्ण गलियों को, गली को खोर कहते हैं, खोरी खोर ब्रजभाषा में भी खोर है। भारतेंदु जी ये पर लिखते हैं, राधा रानी कहती हैं हरी सखी ही को कृष्ण ने गिरा दिया, ऐसे ही गिरा रहे भगवान, हमारे दही को गिरा दिया, मटका फोड़ दिया। तो ललिता जी कहते हैं इसमें क्या है, दही जमा लेंगे, दूसरा दही जमा लेंगे, इसके लिए क्यों बेचैन है। तो कहते हैं दही तो जमा लेंगे लेकिन वो दही गिराने वाला मन लेगा, वो मन कहाँ पाएंगे, दही जो गिराए सो तो फिर ही जमाए नहीं है, मन कहाँ पाए, दान मिस जान लेना, दान के बहाने से जो हमारे मन को ले लिया तो मन कहाँ पाएंगे। तो किस तरह कृष्ण साकरी खोर में दही लूटे उसके विषय में राधा रानी कहती है, खोरी साकरी में आज छिपके बिहारी लाल, तरु पर विराजे छल जी अति किन्हो है। तो साकरी खोर में छिप करके वृक्ष के ओट में थे और हमारे साथ छल किए, ग्वाल बाल साथ के हुई तो उत घाटी में, और अपने सखाओं को भी नियुक्त कर दिए थे, सब छिप करके घाटी में थे, इधर साकरी खोर के घाटी में वर्षा में छिपे हरिचंद दान हेतु छिप दीना, सब छिपे थे और सबका छिप दान लेने में लगा हुआ, दही लेकर के खाते थे तत्काल। ताही समय गोपी ने बिलोकी कूदी धाये सब, राधा रानी कहते हैं उसी समय कूद करके सब दही खाने लगे, उधम मचाया दूध दही घृत छीनो है, उधम मचाया दूध दही घी सब छीनो, इसी के लिए छिनवाने के लिए ही वो जाती ही है, बेचने के लिए नहीं जाती। तो दही जो गिराए हो सो तो फिर हूँ जमा ली है, दही गिराए तो दूसरे दूध का फिर जमा लूंगी दही, लेकिन मन कहाँ पड़ी है, दानवी से जन ली है मन। खोरी साकरी में आज छिपी कर बिहारी लाल, खोरी साकरी में आज छिपी कर बिहारी लाल, खोरी साकरी में आज छिपी कर बिहारी लाल, खोरी साकरी में आज तरु पै बीराजे छल जिए अति किन है, तरु पै बीराजे छल ग्वाल बाल साथ के हुई तो उत घाटी में, ग्वाल बाल 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 साथ केहू इत उत घाटी न में, बाल बाल छिपे हरी चंद दान हेतु चित दिनो है, छिपे हरी चंद दान